टेल्स ऑफ पंचतंत्र,
पंचतंत्र की कहानियां, दुश्मन का स्वार्थ।
एक पर्वत के समीप बिल में मंदविष नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वो बड़ा रौबिला सांप था। जब वो लहरा कर चलता तो बिजली सी कौन जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविष का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साये से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविष इसी उधेड़ बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वो दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी, वहां उन्हीं का राज था। मंदविष वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविष ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंका, तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविष विनम्र स्वर में बोला, राजन वे पुरानी बातें हैं, अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूं, श्राप से मुक्ति चाहता हूं, ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदविष ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था, वहां कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाववश मैंने उसे काटा और वो बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट किया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरु जी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बैठा कर सैर कराऊं। मंदविष की बात सुनकर मेंढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ? उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदविष की बात सुनाई। सभी मेंढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर्प की सवारी करें, यह एक अद्भुत बात होगी, हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हां में हां मिलाई। मेंढक राज ने बाहर आकर मंदविष से कहा, सर्प हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक मंदविष की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविष ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदविष के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविष सबसे पीछे वाले मेंढक को गप खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविष की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वो खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविष को मेंढकों को ढोते हुए देख लिया। बाद में उसने मंदविष को बहुत धिक्कारा, अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? मंदविष ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है, अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदविष के दिन मजे से कटने लगे। वो पीछे वाले मेंढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता ही न चलता। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। मंदविष ने कहा, राजन सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों व झीलों में जा रहे हैं। मेंढक राज की छाती गर्व से फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेंढक कम होते जाते वो ये सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वो दिन भी आया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए, केवल मेंढक राज अकेला रह गया। उसने खुद को अकेले मंदविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविश से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूं, मैं अकेला कैसे रहूंगा? मंदविश मुस्कुराया, राजन आप चिंता ना करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदविश ने मेंढक राज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेंढक पहुंचा दिए गए थे।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है।
ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।